हम पार्क में बैठे हैं, वहां कैसे हम भगवान को याद करेंगे? हम बाजार में सामान खरीद रहे हैं, कैसे हम भगवान को याद करेंगे? कैसे हम याद करेंगे? जब हम चलते हैं तो रास्ता में लोग देखते हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, देखते हैं, पेड़ों हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, आदमी लोग घूम रहा है, तो कैसे भगवान को बारे में हम चिंतन करेंगे? वो तो हम जो देख रहे हैं उनके पीछे भगवान है, ये हम विचार कर सकते हैं। लोग आदमी को हम देखते हैं, हम सोच सकते हैं हर आदमी के हृदय में भगवान है, नहीं तो हम सोच सकते, देखो भगवान के इतने नजदीक होते हुए भी इन लोग सब भगवान को भूल गए हैं, है ना? तो ऐसे हम जो कुछ देख रहे हैं, बाजार में सामान खरीद रहे हैं, हम सोच सकते हैं वो देखो ये ये बैगन, ये अनाज कितना अच्छा है, मैं चलो इसको खरीद लेते हैं और इसके द्वारा भगवान को भोग लगाएंगे, हम सोच सकते हैं ऐसे। तो भगवान को चिंतन का मतलब केवल ये नहीं है कि हम एक जगह में बैठकर केवल भगवान को ध्यान करते रहेंगे, हमारे कार्य करते हुए भी हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं। यही है मन मना की अर्थ। अर्जुन कहाँ थे उस समय? कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में थे। भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन सोचा था कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। शायद अर्जुन सोच रहा था मैं जंगल में जाके कोई गुफा में बैठ के कृष्ण को ध्यान करूंगा। बल्कि भगवान क्या बोला कृष्ण अर्जुन को? भगवान क्या बोला अर्जुन को? ऐसे सारे चिंतन को छोड़ो, लड़ाई करो, है ना? युद्धस्य विगत ज्वरः, ये जो ज्वर है, ये जो गलत चिंतन है, ये जो बीमारी है, ये जो गलती मनोभाव है, ये सब छोड़कर लड़ाई करो। अब फिर भगवान कह रहे हैं मन मना भवो, भगवान कह रहे हैं लड़ाई करो और फिर भी बोल रहे हैं मन मना भी भवो, तो कैसे होगा? इसका मतलब क्या है? लड़ाई करते समय तुम मेरे बारे में चिंतन, कैसे हम लड़ाई करते समय भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं? वो तू असुर है, तू भगवान को नहीं मानता मानता है, चलो मैं तेरा गर्दन काट दूंगा। ऐसे भी हम भगवान के बारे में याद कर सकते हैं, तुझे मैं मार डालूंगा क्योंकि तू भगवान को नहीं मानते है। ये भी मनमाना भगवान, ये है मनमाना भगवान। हर विषय में, हर कार्य में भगवान को याद करना। बल्कि हमारे लिए वैसा, अर्जुन क्षत्रिय थे तो अर्जुन ऐसे ऐसे भगवान के बारे में सोच रहा था कि असुरों को मार के मैं ये संसार को साफ करूंगा, ये सब गंदगी है, ये सारे गंदगी को मैं निकाल दूंगा, धर्म को संस्थापन करूंगा भगवान के। ये अर्जुन का विचार था, अर्जुन का वृत्ति था। बल्कि हमारा वृत्ति क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग कौन है? कम से कम हम लोग क्षत्रिय नहीं है। हम लोग भक्त बने हैं, तो हमारा कार्य है सबको जाके भगवान की वाणी को प्रचार करना। वो तुम भगवान को नहीं जानते हो, भगवान के बारे में उनको समझाना। तो ऐसे हम मनमना भवो हो सकते हैं। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रहता है, वही मन को वश में कर सकता है और भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो सकता है। भगवान के चरण कमलों में मन की ये एकाग्रता समाधि कहलाती है। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुए बिना वो भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ दार्शनिक या वैज्ञानिक विराट प्रकृति के एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं। वे इतने प्रगतिशील भी हो सकते हैं कि विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों के परमाणुओं का यहाँ तक कि सूर्य या कि आकाश तारों तथा अन्य ज्योतिषकों के चमकीले अणुओं की गणना कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान की गुण का गणना कर पाना संभव नहीं है। कल हम यहाँ तक पाठ किया था, ब्रह्मा जी भी भगवान को गुणों को समझ नहीं पाया। ब्रह्मा जी भी भगवान को समझ नहीं पाया। तो हमारा क्या बात है, हम लोगों की क्या बात है? जैसा कि वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है कि परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है। परम पुरुष, उन्हें सामान्यतया निर्गुण कहा जाता है। भगवान का निर्गुण कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? कोई कोई आदमी सोचता है कि भगवान निर्गुण है, उसका मतलब भगवान का कोई गुण नहीं है। ऐसा हो सकता है भगवान का गुण नहीं है? अगर भगवान का गुण नहीं है तो भगवान इतने सारे कार्य कैसे संपादन कर रहे हैं? बल्कि निर्गुण का मतलब होता है कि भगवान में भौतिक गुण नहीं रहता है, बल्कि आध्यात्मिक गुण का आधार है भगवान। किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी भी गुण से विहीन लगाते हैं, क्योंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं होता, किंतु वस्तु स्थिति ये नहीं है। असल बात तो ये है कि वे समस्त गुणों के मूलाधार हैं। सारे गुण सदा उन्हीं से उद्भूत होते रहते हैं। अतः एक असीम व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? एक सीम व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों के गणना कर सकता है? वो किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है, इसलिए वे निर्गुण कहलाते हैं, वे जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए। योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन, ज्ञान योग या शारीरिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को इतना ही समझ लेना होगा कि इस शरीर में सुख तथा दुख पूर्व निर्धारित हैं। इस शरीर के दुख की दूर करने या सुख प्राप्त करने के लिए विविध आसन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो ये है कि मनसा वाचा कर्मणा भगवान की शरण ग्रहण की जाए और निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहा जाए। ये दिव्य श्रम सार्थक हैं, किंतु परम सत्वों को समझने के अन्य सारे प्रयास असफल होते हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भगवान या योग शक्ति द्वारा उस परम पुरुष को समझने का प्रयास नहीं करता, अपितु वो भक्ति में लगकर भगवान पर ही आश्रित रहता है। वो जानता है कि इस शरीर को जो कुछ भी होता है वो उसके पूर्व कर्म का फल है। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्तिमय जीवन व्यतीत करता है तो वो स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से पाठ कर रहा हूं। यदि कोई इस प्रकार का सरल भक्तिमय जीवन व्यतीत करता है तो वह स्वतः भगवान के दिव्य धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। जो मतलब जो भक्ति करता है वो भगवान का भगवत धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है। उत्तराधिकारी का मतलब क्या है? हाँ, यह पता है सबको उत्तराधिकारी शब्द का मतलब क्या है? हाँ राघव पंडित, तुम थोड़ा एक विश्लेषण करके बता दो। हाँ उत्तराधिकारी मतलब हाँ इनहेरिटेंस। हाँ जैसे पिता का संपत्ति के में पुत्र का अधिकार है, तो वैसे हम भगवत धाम का उत्तराधिकारी बन जाते हैं। मतलब भगवत धाम में हमारा किस्सा हम अधिकार कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये मेरा है, ये मेरा मेरा बर्थ राइट है। बर्थ राइट का हिंदी शब्द हिंदी क्या है? जन्मकृत अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार। इंटरेस्टिंग प्रियव्रत। तो देखो भक्ति, हाँ भक्ति का फल कितना कितना अनमोल होता है। भक्ति करने से फायदा क्या होता है? तो भक्ति करना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक जीव परमेश्वर का विभिन्न अंश और भगवान का पुत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दिव्य आनंद में हाथ बटाने का प्राकृतिक अधिकार है, किंतु पदार्थ के संपर्क में आने से बद्ध जीव इस उत्तराधिकार से वंचित होते रहे हैं। यदि कोई अपने आप को भक्ति में लगाने की सरल विधि अपनाता है तो वह स्वतः भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर के साहचर्य का दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक दंभी जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाह रहे थे। उन्होंने भगवान के ग्वाले भगवान के ग्वालों तथा बछड़ों को इसलिए चुरा लिया था कि जरा देखे वे उन्हें किस तरह ढूंढ पाते हैं। अपनी चाल के बाद ब्रह्मा ने यह स्वीकार किया कि उनका यह प्रयास अत्यंत धृष्ट था, क्योंकि वे आदि शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी चेतना के लौटने पर ब्रह्मा ने देखा कि यद्यपि वे इस संसार के अन्य समस्त जीवों की नजरों में अत्यंत शक्तिमान प्राणी हैं, किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत के विज्ञानियों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्य की खोज कर ली है, और जब इनका परीक्षण किसी नगर या इस लोक के किसी नगण्य स्थान में किया जाता है, तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित तहलका मच जाता है। किंतु यदि इन परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो तो उनकी क्या महत्ता रह जाएगी? समझा? ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, इसको यहां एक बॉम्ब फेंकेगा तो क्या होगा? उस जगह का सत्यनाश हो जाएगा, वो ध्वंस हो जाएगा। बल्कि उसको अगर सूर्य लोक में जाकर फेंकेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो भगवान, तो आप देखो भगवान की शक्ति के समक्ष ये सारे हथियारों का क्या शक्ति है, क्या प्रभाव है? कुछ भी नहीं। वे यहां पर नगण्य हैं, वे वहां पर नगण्य हैं। इसी तरह ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण को बछड़ों तथा ग्वालों का चुराया जाना, उनकी योग शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले ही लगा हो, किंतु जब श्री कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना बछड़ों तथा बालकों के रूप में किया और बिना प्रयास से उन सबका भरण किया, तो ब्रह्मा की समझ में आ गया कि उनकी अपनी शक्ति कितनी नगण्य है। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों द्वारा की गई छोटी से छोटी सेवा को भी नहीं भूल पाते। वे अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु तथा वत्सल हैं कि वे उनके द्वारा संपन्न थोड़ी सी सेवा को भी बड़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की आध्यात्मिक सेवा की थी। इस विशेष ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष कृष्ण के वे निस्संदेह आज्ञाकारी दास हैं, अतः वे कृष्ण की प्रसन्न कर सके। उन्होंने भगवान से कहा कि वे उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझकर उनकी छोटी सी छोटी भूल तथा धृष्टता को क्षमा कर दे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने शक्तिशाली पद ब्रह्मत्व के कारण गर्व हो गया था। चूंकि वे इस भौतिक जगत में रजोगुण के अवतार हैं, अतः ऐसा होना स्वाभाविक था और इसलिए उनसे ये भूल हो गई। किंतु ब्रह्मा जी आज्ञा करते थे कि चूंकि वे भगवान के अधीनस्थ थे, अतः भगवान कृष्ण उन पर कृपा करेंगे और उस भारी भूल के लिए उसे क्षमा कर देंगे। ब्रह्मा को अपने वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। जो अहंकार आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति से युक्त है, ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है, जिस प्रकार की हमारा शरीर सात बित्ते का मापा जाता है। सामान्यतया प्रत्येक मनुष्य के शरीर की माप 7 बित्ते 3.5 हाथ परिगणित की जाती है। एक बित्ते कितना होता है? ये हाथ का जो ये लगभग 9 इंच, तो अपने शरीर के ये 7 ऐसा अपने हाथ की बराबर 7 हाथ बित्ते हैं उसका शरीर की नाप, या तो 3.5 हाथ यहां से यहां तक। भले ही ये ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान दिखाई दे, किंतु उसकी माप ब्रह्मा के 7 बित्ते ही है। हाँ, इस ब्रह्मांड का आयतन कितना है ब्रह्मा जी का? 7 बित्ते। तो देखो ब्रह्मा जी कितने विशाल हैं, पर वो भी भगवान को पता नहीं लगा सका। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के छिद्र में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं, और ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही है। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि जीव हैं, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या विसात है। अतः ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। यदि ये शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाते हैं और इस तरह खेलते समय वो अपने माता का शरीर स्पर्श करता है, तो क्या माता इस शिशु से नाराज होती है? निस्संदेह नहीं, निस्संदेह नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने ही महान पुरुष क्यों न हो, वे तथा अन्य सारे लोग भगवान के गर्भ के भीतर स्थित हैं। भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां ये शक्ति कार्य न कर रही है। चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के अंतर्गत है, अतः चाहे हम लोग चाहे इस लोक के ब्रह्मा ही या अन्य लाखों करोड़ ब्रह्मांड के ब्रह्मागण ही हो, वे सब भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान हैं। अतः भगवान की माता और माता के गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भली माता भी शिशु से नाराज नहीं होते, भली माता कभी शिशु से नाराज नहीं होते हैं होती, यद्यपि वो अपने पांव को हिला जुला कर अपनी माता के शरीर को छूता रहता है। तब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ, जो तीनों लोकों भूलोक भूवरलोक तथा स्वर्लोक को विनाश के बाद खिला। ये ब्रह्मांड तीन भागों में विभाजित हैं। इनके नाम है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। प्रलय के समय ये तीन लोक जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय कृष्ण के पूर्ण अंश स्वांश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक तैर पर निष्कर्ष निकला है कि नारायण ब्रह्मा की माता है। क्योंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वे नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं और आयन का अर्थ है आश्रय। गर्भोदोक्षाय विष्णु को नारायण कहा जाता है, क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं। साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी हैं। इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। इस अर्थ में भी वे नारायण हैं, क्योंकि आश्रय के साथ साथ आयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। शरीर परिवर्तन होने पर प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में भगवान नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण हैं, वे ही नारायण के स्रोत हैं और नारायण बहिरंग शक्ति माया के प्रदर्शन नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार हैं। बहिरंग शक्ति या माया के कार्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं और नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना के पहले से कार्यशील थी। अतः नारायण से कारणोदोक्षाय विष्णु तक, कारणोदोक्षाय विष्णु से गर्भोदोक्षाय विष्णु तक, गर्भोदोक्षाय विष्णु से क्षीरोदोक्षाय विष्णु तक और क्षीरोदोक्षाय विष्णु से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार कृष्ण के विस्तार और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। उनका संचालन भौतिक शक्ति द्वारा ना होने के कारण वे क्षणिक नहीं हैं। माया द्वारा संचुलित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु शाश्वत है। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुनः पुष्टि की कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी ये विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण ये विराट रूप नारायण भी हैं और हम सब इस नारायण रूप की गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में और अब अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप ही आदि नारायण हैं। तो ये अध्याय काफी लंबा है, तो इसलिए आज भी हम यहाँ तक ही रखेंगे। और काफी लंबा है, शायद कोई दिन लग जाएगा, दो तीन दिन लग जाएगा इस अध्याय को पूरा करने में। बल्कि मेरा पूछना था, आप सब समझ रहे हैं मैं जो पकड़ रहा हूँ? सब समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? हाँ, किसको मैं पूछूंगा? राधा रानी, समझ में नहीं आया? ओके। मालिनी? हाँ ओके। तुम सब पीछे बैठे हो, आपको कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? हाँ, मेरा हिंदी जो है उच्चारण ठीक हो रहा है? मैं खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इससे मेरा प्रैक्टिस भी हो रहा है। कोई प्रश्न है किसी को? यस नहीं, भक्ति में आने से पूर्व निर्धारित सब कुछ एकदम डिसमिस हो जाता है। भगवान बोला ना, अहं त्वं सर्वपापेभ्यः, इसका मतलब क्या? सब पाप अगर खत्म हो गया तो कष्ट रहेगा, तो बाकी क्या रह गया? आनंद। तो भक्ति करने से केवल आनंद ही आनंद मिलता है। आपका प्रश्न है? हाँ, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। अच्छा, ये लय जो है, प्रलय जो है, वो दो प्रकार का होता है। एक है आंशिक प्रलय, हाँ, और एक है पूर्ण प्रलय। हाँ, जब आंशिक प्रलय भी दो तरह का होता है। एक होता है अनंत शेष, हाँ, जो पृथ्वी, जो ब्रह्मांड को धारण करके रखे हैं, उनका मुंह से आग निकलता है और वो आग सब कुछ जला देता है। हाँ, और एक प्रकार की प्रलय होता है कि ये प्रलय के कारण सारे पानी में सब, हाँ, इतना पानी बरसता है कि सारे एकदम सब कुछ पानी में डूब जाता है। हाँ, तो ऐसा ये ऐसी जो प्रलय है वो आंशिक प्रलय है। बल्कि आत्यंतिक प्रलय मतलब पूरा पूर्ण प्रलय तब होता जब ये सृष्टि क्यों हुआ, भगवान भौतिक जगत के प्रति, माया के प्रति दृष्टिपात करने के कारण। बल्कि भगवान जब दृष्टिपात को संवरण कर लेते हैं तब सब कुछ फिर ध्वंस हो जाता है, मतलब अव्यक्त हो जाता है, उसको प्रकाश नहीं रहता है। भगवान के दृष्टिपात के कारण जगत का सृष्टि हुआ। भगवान जब अपना दृष्टि वापस ले लेते हैं और मोड़ लेते हैं तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। तो वो जो है, जो बस वो एकदम सब कुछ मिट जाता है तब, और कुछ नहीं रहता है, केवल अंधेरा रहता है, अव्यक्त। और एक प्रकार का प्रलय है, वो है व्यक्तिगत प्रलय। जब हम, हमारा मृत्यु होता है तब प्रलय हो जाता है। हाँ, तो ये भी ऐसी प्रलय, मृत्यु के पश्चात सब नष्ट, हमारे लिए सब कुछ ध्वंस हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो ये मृत्यु, प्रलय, ये सब एक ही किस्म का होता है। बल्कि भक्ति करने से हम उससे परे चले जाते हैं, तब और प्रलय नहीं रहता है। ये हाँ, ये तो अचिंत है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, फिर प्रभुपाद जो वर्णन कर रहे हैं कि ये सारे ब्रह्मांड भी ब्रह्मा जी का शरीर है, ये ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का शरीर है, फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक सत्यलोक में रहते हैं। तो ये अचिंता भेदाभेद। सेकंड क्वेश्चन
है कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भी भौतिक शक्ति से आते हैं वो टेम्पररी है, बट इफ दे एग्जीक्यूटेड बाय स्पिरिचुअलिटी एटर्नल, तो जो वैष्णव अपराध करते हैं या अपराध भगवान का या वैष्णव का करते हैं, तो ये क्या अध्यात्म है कि भौतिक?
ये अपराध भौतिक स्तर में होता है, बल्कि उसका उसका प्रभाव आध्यात्मिक स्तर में होता है। क्योंकि जब कोई शुद्ध भक्त बन जाता है, मतलब जब कोई आध्यात्मिक स्तर में आ जाता है, तो वहां अपराध का कोई अवकाश नहीं रहता है। अपराध होता है जब वो भौतिक स्तर में है, मतलब जब तक वो आध्यात्मिक स्तर में नहीं जाता है तब तक ही केवल अपराध का अवकाश रहता है। बल्कि इसका जो प्रभाव, प्रयोग अपराध कहाँ हो रहा है, वैष्णव के प्रति हो रहा है, तो वो हुआ आध्यात्मिक स्तर। द प्लेटफॉर्म ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस इज मेटीरियल, बट द ऑफेंस इज टेकिंग प्लेस ऑन द स्पिरिचुअल।
उसका फल भी शाश्वत है
क्या या कुछ? नहीं, जब ये वैष्णव के पास जब माफी मांग लेते हैं, तो वैष्णव जब अपराध को क्षमा कर देते हैं तो मिट जाता है। सो दैट वे इज नॉट इटर्नल लाइक एवरीथिंग ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, बिकॉज इट्स नॉट इन, इट इज हैपनिंग ऑन द स्पिरिचुअल ग्राउंड, but it's not spiritual as such.
छह ऋतु हैं, उनमें से पहला तीन ऋतु काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का डायरेक्शन चेंज करके भगवान की ओर लगा सकते हैं। काम को भक्ति में, क्रोध को विद्वेषियों को, लोभ को कृष्ण प्रसाद के, यदि मोह मान परमात्म से, इनका डायरेक्शन कैसे चेंज किया जा सकता है भगवान की?
मोह जब भगवत तत्व ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तब और मोह नहीं रहता है, विनष्ट हो जाता है। जब भगवान को दास बन जाते हैं तो मद नहीं रहता है, वैसे ही जब भगवान को शरण ले लेते हैं तो और मात्सर्य नहीं रहता है, डायरेक्शन चेंज होता है। नहीं नहीं, प्रलय चिन्मय जगत में प्रलय नहीं होता, चिन्मय जगत नित्य है, वहाँ प्रलय का कोई अवकाश नहीं है, प्रलय केवल भौतिक जगत का नहीं होता है।
ये नाम अपराध है, पहला है जो जो भक्तों ने भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन समर्पण किया है उसको निंदा करना एक नंबर अपराध है। तो हम देखता है, हम मान लीजिए कोई भक्त ईश्वर विरोधी काम करता है, क्या भगवान का विरोधी भगवान का विरोधी काम करता है उसको क्या समालोचना करना निंदा करना ये क्या अपराध है?
वो अगर वैष्णव है तो उससे दूर रहना, कोई अगर देखता है कि ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भक्ति के विरोधी है तो उसको उसके साथ संपर्क त्यागना ही अच्छा है, उनसे दूर रहना, ना तो उनसे उनको उनके पास अपराध करो ना तो उसके संग करो, उनसे दूर रहना। हाँ
मैंने ये प्रसंग पढ़ा नहीं था कभी, मैंने तो पुस्तक भी नहीं, पर वो जो सरल शब्द आया है ये मैं कर लेता।
अच्छा,
ये भगवान की लीला है।
हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अब आरती में जाना है आप, तो आरती में हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।